दूसरा इतिहास अध्याय 6 पद 1। तब सुलेमान कहने लगा, यहोवा ने कहा था कि मैं घोर अंधकार में वास किया रहूंगा। यहां सुलेमान ने लोगों को धर्म उपदेश सुनाया। उसने सभी प्रधान लोगों को बाहर आंगन में बुलवाए, जहां उसने पीतल का मंच बनवाया था जो 7.5 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में था और 4.5 मीटर ऊंचा था। वो इस मंच पर खड़ा हो गया ताकि सभी इसराइलियों को संदेश सुना सके। उसका उपदेश परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर था। सत्य है कि मंदिर यहां है जो पूरा हो गया है और तैयार है। ये सब परमेश्वर की प्रतिज्ञा की विश्वास योग्यता है। अध्याय 6 पद 7 से लेकर 9 तक। मेरे पिता दाऊद की ये मनसा थी कि इसराइल के परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनवाए, परंतु यहोवा ने मेरे पिता दाऊद से कहा, तेरी जो मनसा है कि यहोवा के नाम का एक भवन बनाए, ऐसी मनसा करके तूने भला तो किया, तो भी तू उस भवन को बनाने ना पाएगा। परमेश्वर ने कहा, दाऊद, तेरी जो मनसा है कि यहोवा के नाम का एक भवन बनाए, ऐसी मनसा करके तूने भला तो किया, ये अच्छा है, ठीक है। परमेश्वर मनुष्यों की मनसा का ख्याल रखता है। बहुत लोगों के हृदय में परमेश्वर को देने की मनसा होती है, परंतु उनके पास देने के लिए कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये उनके हृदय की मनसा है, इसलिए परमेश्वर उसको ग्रहण करता है। कुछ लोगों के पास देने को बहुत कुछ होता है, परंतु वे मन से नहीं देते, उसे परमेश्वर ग्रहण नहीं करता। परमेश्वर आपके हृदय में रुचि रखता है। आपके हृदय में क्या मनसा है? बहुत बार आप उसे पूरा नहीं कर पाते जो आपके हृदय में है, परंतु आपके हृदय में जो है उसे परमेश्वर ध्यान में रखता है। आप में से बहुत से लोग हृदय से परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं। मसीह संस्थान में कार्य करना आपके हृदय में है और आपके हृदय की मनसा को परमेश्वर स्वीकार करता है, ये अच्छा है। शायद आप चर्च में उपदेश देने जैसी सेवा कभी न कर पाए, तो भी मेरा ये विश्वास है कि वो सेवा का कार्य है। कुछ लोगों के पास दुर्भाग्य से उपदेश देने की सेवा है। मैं वास्तव में अनुभव करता हूं कि गुप्त और खामोशी से की गई धर्म सेवा का प्रतिफल उस सेवा से अधिक है जो सार्वजनिक तौर पर मनुष्यों के बीच की जाती है, जहां आपको कार्यकर्ताओं से सूचनाएं मिलती रहती है कि आप कैसे महान हैं। ये बड़ी रोचक बात है कि बहुत से लोग उपदेश देने की या फिर लोगों के बीच प्रत्यक्ष सेवा के लिए प्रार्थना करते हैं। मैंने वर्षों परमेश्वर से प्रार्थना की है कि वो मुझे शांत धर्म सेवा दे। बहुत वर्ष मैंने प्रार्थना की है कि परमेश्वर मुझे मसीह व्यवसायी बनाए। मैं ये प्रमाणित करना चाहता हूं कि आप यीशु मसीह के लिए समर्पित होकर भी व्यवसाय कर सकते हैं। मैंने लोगों को कहते सुना है, ओह, एक मसीह का व्यवसायी होना बहुत कठिन है। मैं ऐसा नहीं मानता। मैंने सदा परमेश्वर से चाहा कि वो मुझे व्यवसायी बनाए, ताकि मैं ये सिद्ध कर सकूं कि आप पूरी तरह से इस संसार में व्यवसाय करते हुए सच्चे मसीह हो सकते हैं। आपके हृदय में परमेश्वर के प्रति क्या है? परमेश्वर आपका हृदय देखता है। वो आपके हृदय में क्या है जानता है, और यही नहीं, आपके हृदय की मनसा क्या है वो उस पर ध्यान देता है। और जब न्याय का दिन आएगा, तब हमें मसीह के न्याय सिंहासन के सम्मुख खड़ा होना होगा कि जो कुछ हमने शरीर में रहकर किया है उसका प्रतिफल पाए, चाहे भले या बुरे कार्यों दोनों का। 1 कुरिन्थियों 3:13। वो आग हर एक काम परखेगी कि कैसा है। और जिसका काम स्थिर रहेगा वो मजदूरी पाएगा, परंतु जिनके कार्य काठ या घास के होंगे न्याय के दिन जल जाएंगे। आपको आकर परमेश्वर के सम्मुख अपने कार्यों को रखना होगा जो परमेश्वर की आग से परखे जाएंगे और प्रमाणित किए जाएंगे। प्रभु, मेरा प्रतिफल कहाँ है? तुम पा चुके, तुम दिखाने के लिए काम करते थे कि हर कोई जान गया कि तुम क्या कर रहे थे। जब तू प्रार्थना करे तो अपने और दूसरे के आगे तुरी मत बजा या सड़कों के कोने पर जाकर बड़ा मजाक मत बना। अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर ले, क्योंकि तुम्हारा पिता जो गुप्त में भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। जब तुम दान दो तो दिखावा ना करो, परंतु तुम्हारा बायां हाथ भी ना जाने कि दैने हाथ से क्या दिया है। मती 6:4। तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। जब तू उपवास करे तो लोगों को दिखाने के लिए मुंह लटकाकर मत घूम, परंतु मुंह को धो और तेल लगा, खुशी के साथ उपवास कर और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आपके काम परखे जाएंगे। काम करने के पीछे आपका उद्देश्य क्या था? क्या मैं लोगों के सम्मुख धर्मी दिखाना चाहता था? क्या मैं लोगों से प्रशंसा पाना चाहता था? क्या मैं अपनी स्थिति को अपने अहम की पूर्ति के लिए प्रयोग कर रहा था? यदि ऐसा है तो मेरे कार्य आग में धुएं के समान उड़ जाएंगे, मेरी परख होगी और मैं अपना प्रतिफल खो दूंगा, क्योंकि मेरे काम व्यर्थ थे या अपनी महिमा के लिए थे। परमेश्वर मेरे हृदय का न्याय करेगा कि मेरा उद्देश्य क्या था। इसलिए ये अति आवश्यक है कि हम यीशु मसीह के प्रेम से निरंतर प्रेरित रहें। जैसे पौलुस कहता है, 2 कुरिन्थियों 5:14, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए। ये महत्वपूर्ण है कि जो मर गए उनसे हम जीवन का सबक सीख लेना चाहिए। और परमेश्वर मुझे विवश करता है कि मैं यीशु का सुसमाचार जो मुझ में जलता है उसका प्रचार करूं, अर्थात परमेश्वर का कार्य पूरी लगन से करूंगा। रोमियों 9:3। क्योंकि मैं यहां तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी है यहूदी, आप ही मसीह से शापित हो जाता। ये दाऊद की मनसा थी कि वो परमेश्वर का भवन बनवाए। परमेश्वर ने उससे कहा, तेरी जो मनसा है कि यहोवा के नाम का एक भवन बनाए, ऐसी मनसा करके तूने भला तो किया, तो भी तू उस भवन को बनाने ना पाएगा। तेरे हृदय की ये मनसा तो अच्छी है, मैं इसे ग्रहण करता हूं, परंतु दाऊद तू ऐसा करने ना पाएगा। 6:9 में आगे लिखा है, तेरे जो निज पुत्र होगा वही मेरे नाम का भवन बनाएगा। दाऊद के लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा, तू उस भवन को बनाने ना पाएगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही मेरे नाम का भवन बनाएगा। यहां सुलेमान परमेश्वर के कार्यों की विश्वास योग्यता पर उपदेश दे रहा है और कहता है, 6:10-11, ये वचन जो यहोवा ने कहा था उसे उसने पूरा भी किया है, और मैं अपने पिता दाऊद के स्थान पर उठकर यहोवा के वचन के अनुसार इसराइल की गद्दी पर विराजमान हूं, और इसराइल के परमेश्वर यहोवा के नाम के इस भवन को बनाया है, और इसमें मैंने उस संदूक को रख दिया है जिसमें यहोवा की वो वाचा है जो उसने इसराइलियों से बांधी थी। सुलेमान का उपदेश लोगों के लिए परमेश्वर की विश्वास योग्यता का संदेश था। 6 पद 12 से लेकर 14 तक। तब वो इसराइल की सारी सभा के देखते यहोवा की वेदी के सामने खड़ा हुआ और अपने हाथ फैलाए। सुलेमान ने 5 हाथ लंबी, 5 हाथ चौड़ी और 3 हाथ ऊंची पीतल की एक चौकी बनाकर आंगन के बीच रखवाई थी। उसी पर खड़े होकर उसने सारे इसराइल की सभा के सामने घुटने टेक कर स्वर की ओर हाथ फैलाए हुए कहा, हे यहोवा, हे इसराइल के परमेश्वर, तेरे समान ना तो स्वर्ग में और ना पृथ्वी पर कोई ईश्वर है। तेरे जो दास अपने सारे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलते हैं, उनके लिए तू अपनी वाचा पूरी करता है और करुणा करता रहता है। परमेश्वर संपूर्ण जगत में अपनी प्रतिज्ञा पूरी करता और आप पर दया दिखाता है। अध्याय 6 पद 15 से लेकर 20 तक। तूने जो वचन मेरे पिता दाऊद को दिया था उसका तूने पालन किया है। जैसा तूने अपने मुंह से कहा था वैसा ही अपने हाथ से उसको हमारी आंखों के सामने पूरा भी किया है। इसलिए अब हे इसराइल के परमेश्वर यहोवा, इस वचन को भी पूरा कर जो तूने अपने दास मेरे पिता दाऊद को दिया था, कि तेरे कुल में मेरे समान इसराइल की गद्दी पर विराजने वाले सदा बने रहेंगे। ये हो कि जैसे तू अपने को मेरे सम्मुख जानकर चलता रहा, वैसे ही तेरे वंश के लोग अपनी चाल चलन में ऐसी चौकसी करें कि मेरी व्यवस्था पर चले। अब हे इसराइल के परमेश्वर यहोवा, जो वचन तूने अपने दास दाऊद को दिया था वो सच्चा किया जाए। परंतु क्या परमेश्वर सचमुच मनुष्यों के संग पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तो तू नहीं समाता। फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में तू क्यों कर समाएगा? तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट की ओर ध्यान दे और मेरी पुकार और ये प्रार्थना सुन जो मैं तेरे सामने कर रहा हूं। वो ये है कि तेरी आंखें, परमेश्वर मैं जानता हूं ये स्थान तेरे रहने के लिए नहीं है। मैं जानता हूं तू इसमें समा नहीं सकता। परंतु अध्याय 6 पद 20 में आगे लिखा है, तेरी आंखें इस भवन की ओर रात दिन खुली रहे। दूसरे शब्दों में प्रभु रक्षा करना। अध्याय 6 पद 20 में आगे, अर्थात इसी स्थान की ओर जिसके विषय में तूने कहा था कि मैं उसमें अपना नाम रखूंगा, और जो प्रार्थना तेरा दास इस स्थान की ओर करे उसे तू सुन ले। ये स्थान तेरे निवास करने के लिए नहीं है, हे प्रभु, स्वर्गों में तू समा नहीं सकता। परंतु ये वो स्थान है जहां मनुष्य आकर तुझसे भेंट कर सके। इसलिए परमेश्वर इस स्थान पर तेरी दृष्टि लगी रहे और तेरे कान उन प्रार्थनाओं की ओर जो इस स्थान से उठती है खुले रहे। अध्याय 6 पद 21, और अपने दास और अपनी प्रजा इसराइल की प्रार्थना जिसको वे इस स्थान की ओर मुंह किए वे गिड़गिड़ाकर करे उसे सुन लेना। स्वर्ग में से जो तेरा निवास स्थान है सुन लेना और सुनकर क्षमा करना। परमेश्वर ये स्थान तेरे रहने के लिए नहीं, तू तो स्वर्ग में रहता है। परंतु जब हम अपनी प्रार्थना चढ़ाएं अपने स्वर्गीय स्थानों से उनकी प्रार्थना सुन लेना और सुनकर उन्हें क्षमा करना। आगे हम उस परिस्थिति को देखते हैं जब वाचा तोड़ दी जाएगी। अध्याय 6 पद 22 और 23, जब कोई किसी दूसरे का अपराध करे और उसको शपथ खिलाई जाए और वो आकर इस भवन में तेरी वेदी के सामने शपथ खाए, तब तू स्वर्ग में से सुनना और मानना और अपने दासों का न्याय करके दुष्ट को बदला देना और उसकी चाल उसी के सिर लौटा देना और निर्दोष ठहराकर उसके धर्म के अनुसार उसको फल देना। प्रभु धार्मिकता के साथ न्याय का चलन हो। अध्याय 6 पद 24। फिर यदि तेरी प्रजा इसराइल तेरे विरुद्ध पाप करने के कारण अपने शत्रुओं से हार जाए, वो उन हालात को पहले से देखता है जो देश को परमेश्वर के विरुद्ध पाप में ले जाएंगे, और इसका सबसे पहला फल होगा कि वे अपने शत्रुओं से हार जाएंगे। अध्याय 6 पद 24 से लेकर 28 तक। और तेरी ओर फिर कर तेरा नाम माने और इस भवन में तुझसे प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट करें, तो तू स्वर्ग में से सुनना और अपनी प्रजा इसराइल का पाप क्षमा करना और उन्हें इस देश में लौटा ले आना जिसे तू उनको और उनके पुरखाओं को दिया है। जब वे तेरे विरुद्ध पाप करें और इस कारण आकाश इतना बंद हो जाए कि वर्षा न हो, ऐसे समय यदि वे इस स्थान की ओर प्रार्थना करके तेरे नाम को माने और तू जो उन्हें दुख देता है इस कारण वे अपने पाप से फिरे, तो तू स्वर्ग में से सुनना और अपने दासों और अपनी प्रजा इसराइल के पाप को क्षमा करना। तू जो उनको वो भला मार्ग दिखाता है जिस पर उन्हें चलना चाहिए, इसलिए अपने इस देश पर जिसे तूने अपनी प्रजा का भाग करके दिया है पानी बरसा देना। जब इस देश में काल या मरी या जुलस हो, गेरुई या टिड्डियां या कीड़े लगे, या उनके शत्रु उनके देश के फाटकों में उन्हें घेर रखे, या कोई विपत्ति या रोग हो, जैसे भी विपत्ति आए, अध्याय 6 पद 29 और 30, तब यदि कोई मनुष्य या तेरी सारी प्रजा इसराइल जो अपना अपना दुख और अपना अपना खेद जानकर और गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करके अपने हाथ इस भवन की ओर फैलाए, तो तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान से सुनकर क्षमा करना और एक एक के मन की जानकर उसकी चाल के अनुसार उसे फल देना। तू ही तो आदमियों के मन को जानने वाला है। बहुत बार हम सोचते हैं और जानते हैं कि बच्चों के मन में क्या है, परंतु सच तो ये है कि हम नहीं जानते। हम लोगों के उद्देश्य को गलत समझ लेते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि उनमें दूसरों की मनसा समझने का वरदान है, तो भी कभी कभी वे मनुष्य के कार्यों को देखकर गलत अर्थ लगा लेते हैं और सदा उनके उद्देश्य में कोई न कोई छिपा अर्थ ही देखते हैं। एक चर्च में जहां मैं पादरी था, एक महिला थी। उसे यदि आप कहें आज तुम कैसी हो, तो वो कहती तुम्हारा मतलब क्या है और क्या कहना चाहते हो, और वो सदैव कोई छिपा हुआ अर्थ खोजना चाहती थी। वो समझती थी कि उसके साथ दो अर्थों वाली बात की जा रही है या व्यंग किया जा रहा है। दो अर्थ की बातें करने का स्वभाव मुझ में नहीं है। ये तो परमेश्वर ही जानता है कि मनुष्य की संतान के हृदय में क्या है। अध्याय 6 पद 32 से लेकर 36 तक। फिर परदेशी भी जो तेरी प्रजा इसराइल का ना हो, जब वो तेरे बड़े नाम और बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के कारण दूर देश से आए और आकर इस भवन की ओर मुंह किए हुए प्रार्थना करे, तब तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से सुने और जिस बात के लिए ऐसा परदेशी तुझे पुकारे उसके अनुसार करना, जिससे पृथ्वी के सब देशों के लोग तेरा नाम जानकर तेरी प्रजा इसराइल की नाई तेरा भय माने और निश्चय करे कि ये भवन जो मैंने बनाया है वो तेरा ही कहलाता है। जब तेरी प्रजा के लोग जहां कहीं तू उन्हें भेजे वहां अपने शत्रुओं से लड़ाई करने को निकल जाएं और इस नगर की ओर जिसे तूने चुना है और इस भवन की ओर जिसे मैंने तेरे नाम का बनाया है मुंह किए हुए तुझसे प्रार्थना करें, तब तू स्वर्ग में से उनकी प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनना और उनका न्याय करना। और तब उसने कहा, निष्पाप तो कोई मनुष्य नहीं है यदि वे भी तेरे विरुद्ध पाप करें। बाइबल कहती है रोमियो 3:23, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। रोमियो 3:10, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। और सुलेमान ने कहा, निष्पाप तो कोई मनुष्य नहीं है। अध्याय 6:36 से लेकर 39 तक, और तू उन पर कोप करके उन्हें शत्रुओं के हाथ कर दे, और वे उन्हें बंधुआ करके किसी देश को, चाहे वो दूर हो चाहे निकट, ले जाएं। तो यदि वे बंधुआई के देश में सोच विचार करें और फिर कर अपनी बंधुआई करने वालों के देश में तुझसे गिड़गिड़ाकर कहे कि हमने पाप किया और कुटिलता और दुष्टता की है, सो यदि वे अपने बंधुआई के देश में, जहां वे उन्हें बंधुआ करके ले गए हो, अपने पूरे मन और सारे जीवन से तेरी ओर फिरे और अपने इस देश की ओर जो तूने उनके पुरखाओं को दिया था और इस नगर की ओर जिसे तूने चुना है और इस भवन की ओर जिसे मैंने तेरे नाम का बनाया है, मुंह किए हुए तुझसे प्रार्थना करे तो तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से उनकी प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनना और उनका न्याय करना, और जो पाप तेरी प्रजा के लोग तेरे विरुद्ध करें उन्हें क्षमा करना। जब वे बंधुआई में चले जाएं और यरूशलेम की ओर मुड़े और प्रार्थना करें, ये आपको किसकी याद दिलाता है? दानियल की। आपको याद होगा कि जब वो बाबुल में बंधुआ था, तब भी वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। वो यरूशलेम की तरफ की खिड़की को खोलकर प्रार्थना करता था, परंतु उसकी प्रार्थना क्या होती थी? वो पाप स्वीकार करता था। उसकी प्रार्थना का आदर्श वही था जो सुलेमान यहां दे रहा है। यदि वे अपने पापों को मानकर कहे, हमने पाप किया है, हमने दुष्टता का काम किया है, आप दानियल की प्रार्थना को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि वो सुलेमान की प्रार्थना को जानता था, क्योंकि वो बिल्कुल वैसे ही प्रार्थना कर रहा था जैसी सुलेमान ने यहां पर की थी कि जब लोग बंधुआई में चले जाएंगे तब करेंगे। दाऊद ने भी प्रार्थना के इसी आदर्श को अपनाया था। अध्याय 6:40-41, हे मेरे परमेश्वर, जो प्रार्थना इस स्थान में की जाए उसकी ओर अपनी आंखें खोले रह और अपने कान लगाए रख। अब हे यहोवा परमेश्वर, उठकर अपने सामर्थ के संदूक समेत अपने विश्राम स्थान में आ। हे यहोवा परमेश्वर, तेरे याजक उद्धार रूपी वस्त्र पहने रहे और तेरे भक्त लोग भलाई के कारण आनंद करते रहे। कितना भव्य दृश्य है, याजक उद्धार रूपी वस्त्र पहने रहे और तेरे भक्त भलाई के कारण आनंद करते रहे। अध्याय 6:42, हे यहोवा परमेश्वर, अपने अभिषिक्त की प्रार्थना को अनसुनी न कर। तू अपने दास दाऊद पर की गई करुणा के काम स्मरण रख।